हम दोबारा इन आयात को कुछ अमली पहलुओं को उजागर करते हुए देखेंगे। आयत नंबर 76 है, इन नकारू नका नमिन कौमी मूसा। पहली बात इससे पता चलती है कि ये बनी इसराइली था। अल्लाह ताला कहते हैं कि कारून मूसा की कौम में से था, और इसके बारे में आता है कि ये बनी इसराइल में से था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल को खुरूज की दावत दी कि आप लोग अलग अपने घर बनाते जाएं, उस वक्त इसने पार्टीबाजी की, अपना एक अलग ग्रुप बनाया और 250 लोगों को अपने साथ मिला लिया, जिसको आप कह सकते हैं कि जत्थेबाजी की, कुछ इस किस्म के हालात बना दिए कि जिसके बाद बिल्कुल वही कैफियत सामने आती है सुनने और पढ़ने के बाद जो गज़वे उहद में नबी सल्लम के मुकाबले में अब्दुल्ला बिन उबई ने किया था, कि अपने साथ 300 लोगों को लेकर अलग हो गया। पढ़ के कोटेशन सुना देती हूँ, और ये बातें जो ये बाइबल के अंदर से हमें मिलती हैं। कहते हैं कि इसके अलावा उसके दौलत या बिगाड़ का कोई तस्करा नहीं है उसमें, लेकिन ये पता चलता है कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो ये शख्स भी अपनी पार्टी समेत इनके साथ निकला, और फिर इसने हज़रत मूसा और हारून के ख़िलाफ़ एक साजिश की जिसमें 250 आदमी शामिल थे। आखिरकार अल्लाह ताला का गज़ब इस पर नाजिल हुआ और ये अपने घर बार और माल असबाब के समेत ज़मीन में धंस गया। तो आप देखिए कि ऐसे लोग चाहे अपनी ही कौम के क्यों ना हो, जब गद्दारी करते हैं तो अल्लाह ताला उनका नाम क्या कह के बयान करते हैं कि कान मिन कौमी मूसा। दुआ करिए कि अल्लाह ना करे कभी हम भी किसी जगह इस्लाम के मामले में काना हो जाए, होने की बजाय थे, क्योंकि इंसान के कदम जब भी हिदायत से पीछे हटते हैं तो उसको खुद भी नहीं पता चलता और वो इस तरह फिसलता हुआ मुँह की खाता है। फबगा अलैहिम से इधर कौन सी बगी मुराद है? ये सरकशी उसकी दौलत की नुमाइश की थी, खुद को बड़ा समझता था, और ये वही बगा है जिसको पीछे हम पढ़ चुके चंद आयात पहले के बतीरत मईशतहा। कुछ बस्तियां या बस्तियों वाले ऐसे हैं कि जो अपनी मईशत पे बहुत बगी करते हैं। यहाँ अगर हम थोड़ी सी बात करें इस बात पे भी, तो आप देखिए कि जो ज़मीन के अंदर धंसना और उसके इस पूरे किरदार पे नज़र डालें तो हमें समझ में आता है कि बतर जो है यानी दिखावे का मर्ज़ असल में एक अखलाकी मर्ज़ है, नफसियाती बीमारी है, और ये पैसे वालों का मर्ज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, व आतई ना हो मिनल कुनूजी मा इन न मफातेहू लतनू उबिल उस्बती उलिल कुव्वा, कि उसके ख़जानों की चाबियाँ इतनी भारी थी कि एक बड़ी जमात उसको बड़ी मुश्किल से उठाती थी। इससे पता चलता है कि पैसा इंसान को नुकसान नहीं देता, लेकिन जब पैसे का दिखावा शुरू हो जाए ना, शो ऑफ शुरू हो जाए, तो वो इंसान को नुकसान देता है। ये असूल हर जगह आता है, इंसान को उसका हुसन नुकसान नहीं देता, लेकिन जब हुसन का दिखावा शुरू हो जाता है ना, नुमाइश शुरू हो जाती है, तो वही चीज़ इंसान के लिए नुकसान का सबब बनती है। खाना पीना अच्छा नुकसान नहीं देता, लेकिन जब खाना पीना खाने की बजाय दिखाने का सबब बन जाए और दिखावे के लिए एक की जगह 10-10 डिशें बनने लगें, तो वो नुकसान देंगी। अगली चीज़ पहनना ओढ़ना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जोड़े पास होना इंसान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता, लेकिन जब वो दिखावे की नज़र होने लगते हैं तो फिर पहनने और बदन ढांपने और गर्मी सर्दी का फ़र्क रखने की बजाय लिबास सिर्फ दिखावे के लिए बनने लगे तो मुश्किल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बतर एक पूरे का पूरा लाइफस्टाइल है, कि जिसमें एक इंसान खुद को इतना पूछने लगता है कि हर चीज़ उसको दूसरों की नज़रों से देखनी पड़ती है अपनी, खुद वो खुश है कि नहीं, उसने पहनना है उसको सुकून मिल रहा है कि नहीं सुकून मिल रहा, उसको उससे कुछ लज्जत मिल रही है नहीं मिल रही, इसकी उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। उसको परवाह होती है कि लोगों में मैं कैसा लग रहा हूँ। आज का तो ऐसे लगता है कि पूरा मुआशरा ही बतर को प्रमोट कर रहा है। इसका एक बहुत मारूफ इजहार जो है ये इश्तहारात के जरिए होता है। आप देखिए कि जिन घरों में टेलीविजन चलते हैं और ऐसे ही बेतुके चलते रहते हैं, सिर्फ यही कह के कोई बात नहीं, इश्तहार ही चल रहे हैं, आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी खामोशी के साथ उनके बच्चों के अंदर कुछ इस किस्म के जज्बात उभरते जा रहे हैं कि जिसमें बतर है। हर चीज़ को दिखा रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं, लालची खुशी, बिस्किट का डिब्बा है तो यूं मुंह बन रहे हैं। आप आमतौर पर देखें, आप बैठे और आपका बच्चा किचन में आए, काउंटर पे आप बिस्किट्स खरीद के लाई हैं, और आपका बच्चा वो हरकतें शुरू कर दे उस उन बिस्किटों के डिब्बों को देखकर जो अमूमन टीवी में दिखाई जाती हैं, आपको कैसा लगेगा? कि कभी नहीं देखा, नदीदे हो, आंखें पाड़े और उछलने लग जाए और टेढ़ा हो जाए और हू हा, कभी एक्शन बनाते हैं, कभी मुंह बनते हैं, कभी आंखें गोल की जाती हैं, हर चीज़ जो नाचती कूदती, ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में चाहे पहली और आखिरी दफ़ा खाया है। ये बतर का कल्चर है। बच्चे कभी बात करते हुए यूँ हिलते ना, मैं देखती हूँ माएँ खड़ी हैं, बच्चे भी कुछ कह रहे, फिर खड़े होकर साथ ही पाँव मारने लगते हैं, तो मुझे इंतहा ही बुरा लगता है। इंसान इन चीज़ों को ज़रूरत की हद तक ले, भूख लगी है खा ले, अब भूख लगी नहीं लेकिन वो खुशबू सूंघते हुए इस तरह मुंह बना रहे हैं, एक्शन बना रहे हैं, और चुपके चुपके माँ सो गई हैं और वो फ्रीज़र खोल रहे हैं और खाने की चीज़ें देख रहे हैं, कैसा लगता है। चंद दिन पहले मैं किसी जगह थी तो टीवी चल रहा था, तो उस टीवी में पता नहीं क्या, कोई शायद मैच वगैरह आ रहे थे तो कोई क्रिकेट के बारे में नगमा शुरू हो गया। यंग लड़कियां, यानी जिनको आप यंग लड़कियां कहेंगे, वो नाचती फुदकती बैठी हुई और कोई गाना गा रही थी, शायद क्रिकेट की मोहब्बत में था क्या था, सब सुन रहे थे, देख रहे थे, बैठे बातें हो रही। जब थोड़ा सा मुझे मौका मिला, मैंने कहा आप सोचें कि ये जो अभी यहाँ कर रही थी स्क्रीन पे, अगर यहाँ हमारे इस ड्राइंग रूम में आके करना शुरू कर दें लड़कियाँ, तो हमें कैसा लगेगा, बहुत ही वाहियात लगेगा, बेकार। आप सोचें कि शॉर्ट्स पहन के लड़कियाँ, और यूं लगे कि ज़िंदगी का मकसद ही है कि इस मैच में जीत जाएं या जितवा दें, ये कौन सा कल्चर है? क्या ये मुसलमानों का कल्चर था? बतर कभी भी मुसलमानों का कल्चर नहीं हुआ। लेकिन जहाँ खेल भी सिर्फ बतर बन जाए, खिलाड़ियों की तस्वीरें, उनके मैगजीन्स, उनकी चीज़ें, ऐसे लगता है सारी कौम को कुछ हो गया, अक्ल ही चली गई, सोच समझ ख़त्म हो गया। इस तरीके से काम करते हैं कि ज़िंदगी का मकसद या पैसा कमाना है और या पैसा खर्च करना है, या खेलना है या पहनना ओढ़ना। मादी खुशियों के साथ खुशियों का तसव्वुर जोड़ दिया, यानी खुशी मिलेगी मादी तसव्वुर से मिलेगी। फॉल्स लिविंग स्टाइल, आप कह सकते हैं ये है बतर। बियॉन्ड योर लिमिट्स, है नहीं पास, आप उसको आम कर रहे हैं। शादी करनी है बच्ची की और आपको इश्तेहारात के जरिए बताया जा रहा है कि कोई बात नहीं, आप लें उधार कर गद्दा और इसको भेज दें। और जहेज जैसी वो चीज़ जिसको इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं दी जाती, उसको बाज दफ़ा आप देखिए कि हमारे यहाँ बतर के नाम पर कैसे अब प्रमोट किया जा रहा है कि आप सुकून से शादियाँ कर सकते हैं। बाज लोग ये जो शादियों के मौके पे जहेज का दिखावा करते हैं, वो क्या होता है? क्या वो बतर नहीं होता? आपको पता है कि बाज लोग सिर्फ 100 बिस्तर इसलिए शादियों में बेटियों को देते हैं कि धूम मच जाए पूरे शहर में कि 100 बिस्तर दिए हैं। और ख़वातीन कहती हैं, अमेरिका में एक थी तो वो कह रही कि मेरी शादी में 100 बिस्तर थे और मैंने आज तक नहीं देखे, पेटियों में पड़े हुए हैं, और जब जाओ तो कभी उसको धूप लगाओ, कभी खोलो, कभी और कभी खोले भी नहीं। एक शादी पूरा कमरा एक भर के, उनका गोल ही क्या था कि एक पूरा खाली घर है और उसको पूरे को जहेज से भरना है। एक पूरा कमरा उन्होंने जेवरात के डिब्बों से भरा, एक पूरे कमरे में सिर्फ उसके जोड़े थे, एक पूरे कमरे में सिर्फ उसके बिस्तर थे। पहनेगी, बिछाएगी इतने बिस्तर, देने हैं तो दीजिए, आप क्यों लोगों का तमाशा करते हैं? और बस लोग ऐसे हैं कि वो जहेज का सामान फैला के साथ कैसेट चला देते हैं, ये हमने अमेरिका से ली थी, ये कनाडा से ली थी, ये जापान की है, ये फलां कंपनी का है, ये टेप रिकॉर्डर इसका है, तो आपको इधर रखने की क्या ज़रूरत थी, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते। ये सारा असर बतर है। सिर्फ अगर आज मुसलमानों के अंदर से ये बतर का मर्ज़ निकल जाए, जो मुझे लगता है कि इस वक्त नॉन मुस्लिम से भी ज़्यादा है हमारे अंदर, इतने कॉन्शियस हैं कपड़े पहनने ओढ़ने के, शादी हो जाए जब तक अच्छे कपड़े ना हो लोग हमें अपने साथ ले जाने को तैयार ही नहीं होते। एक खातून थी, एक शादी के लिए तैयार होके गई और वापस आ गई थोड़ी देर में, जिनके पास से उन्होंने कहा क्या हुआ, कह रही शादी जिनकी उन्होंने मुझे भेज दिया कि ये क्या कपड़े पहन के आई हो, भारी जोड़ा पहन के आओ, हमारी इज्जत का मसला है, और अब वो भारी कपड़े पहन के जाएंगी। आप कहते नहीं उनको हमसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत नहीं है, अपने नाम से मोहब्बत है। एक खातून थी, कहने लगी जब मेरे घर में दावत होती है तो बाहर जो गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं उनको देख के लोग जलते हैं, हमसाए जलते हैं, मतलब यह कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, झंडों वाली गाड़ियाँ आती हैं। आप गाड़ी कहते हैं, गाड़ी तो हो सकता है 1-2 लाख की होगी, आप बस में जाएं जिसमें 10 लाख की बस है। आप सोचिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बंदे को बात ना करनी आती हो, बंदे के अंदर कोई गुण नहीं, अल्लाह की निगाहों में उसका कोई मुकाम ही नहीं है। अल्लाह तो कह रहे फबगा, ये बगावत है, ये सरकशी है। लिहाजा कुरान पढ़ने के बाद कम अज़ कम हमारी ज़िंदगियों में से ये चीज़ें कम होनी चाहिए, क्योंकि बगा का लफ्ज़ जो है ना, ये जुल्म के लिए भी आता है। जब लोग इस तरह का लाइफस्टाइल इख्तियार कर लेते हैं ना, तो बड़े लोगों के जज्बात कत्ल होते हैं। आज जितना फैशन का दौर कह ले, हुसन परस्ती की बात कर ले, नस्ली बर्तरी, कौन किस ख़ानदान से है, कौन किससे ताल्लुक़ रखता है, किसके घर कौन आ रहा है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ, उनके किससे मेल जोल है, ये है वो है, ये स्टाइल मुसलमानों का नहीं था। कारून मुसलमान था उस दौर का, उस दौर में फिरौनी भी ये कुछ करते होंगे, अल्लाह को कोई गुस्सा नहीं आया, अल्लाह को कोई केयर नहीं। जब एक बंदा शिर्क कर लेता है ना, खुली छुट्टी है उसको, शराब पिए, जिना करे, शौक से करे, नो प्रॉब्लम। और आपको भी उनके ऊपर पॉइंट नहीं उठाना चाहिए। जिसने शिर्क कर लिया उसने अपना फंदा काट दिया, हिसाब किताब ख़त्म उसका। अल्लाह एक ही जुमला क़्यामत के दिन कह देगा, फ़ला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। क़्यामत के दिन हम ऐसे काफिरों के लिए बैलेंस ही नहीं रखेंगे। क्यों वक्त ज़ाया करें, क्योंकि इनका तो पत्ता कट चुका। जितनी सख्ती होगी, जितनी तकलीफ़ के हालात होंगे, वो मुसलमानों के साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने नाम लिखाए हुए हैं, वो रजिस्टर्ड मुस्लिम्स हैं। इसको अल्लाह ताला ने यूं ज़मीन में डाला, कहा कि देखो जाओ, फिर तुम ऊपर नहीं रहते, नीचे जाओ। फिर आप देखिए कि इस क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रख़, ये बड़ा गौर तलब नुक्ता है। लोग उसको कहना शुरू हो गए थे कि इतना फ़ख्र ना किया करो, इतने बड़े ना बनो। इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, बेशक अल्लाह ताला फरहीन को पसंद नहीं करता, खुश होने वाले, शो मारने वाले, दिखावा करने वाले को पसंद नहीं करता। ये कौन कह रहे थे, ये कौन सी कौम थी? ये वो कौम होती है जो अपने हाल से बता रही होती है, कुछ अपने में रहो। अब देखिए, जब कोई ऐसी शादी खा के लोग आते हैं ना, तो घर आके बातें करते हैं, फिर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। हैरत की बात है कि जिन लोगों को खुश करने के लिए या जिन लोगों की नज़रों में एक इंसान बड़ा बनना चाहता है ना, वो उनकी नज़रों में भी बड़ा नहीं बनता, बातें ही करते हैं। लोग कहते हैं 4 दिन हुए ना इनको पैसा मिले, जद्दी बुश्ती होते तो ऐसी हरकतें ना करते। हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या मिलता है कि बतर फैल ही नहीं सकता जब तक दूसरे लोग साथ ना दें। ये बड़ा अहम नुक्ता है, ला तफ़रख़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। कि जैसे उसको कुछ लोगों ने समझाया, हमारा भी आज काम क्या है कि अगर आप नंबर एक किसी दूसरे को देखते हैं कि वो बतर का शिकार है, उसकी आदत बन चुकी है अपने आप को बढ़ा के पेश करने की, तो आप उसकी चीज़ों का कोई नोटिस ही ना लें। बहुत बड़े लोग जो अपनी तारीफ़ें सुनने के लिए क्या कुछ कर रहे होते हैं ना, कोई बंदा तारीफ़ करे ही ना, अगली दफ़ा वो काम नहीं करेंगे। किसी को भी आप देखें ना इस तरह के हालात में, तारीफ़ ना करें। क्योंकि देखिए, ये जो फरहीन लोग होते हैं ना, ये असल में अपनी तारीफ़ें करवाने वाले लोग हैं, जो अपनी तारीफ़ सुनने के हरीस हों। ऐसे शख्स की तारीफ़ करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी शुगर पेशेंट को मीठी चीज़ की प्लेट खिला दें। मिसाल है, एक शुगर पेशेंट है, उसकी शुगर पहले ही 300 पे पहुंची हुई है, आप हलवे की प्लेट बनाएं और उसको कहें खाओ, मर जाएगा ना। यही हाल फरहीन का होता है, जो खुद पसंद होते हैं, जो सारा दिन खुद को मशीनों में रखते, छिलवाते, भूखे रहते, डाइटिंग्स करते, दुनिया की नेमतें अपने ऊपर हराम की हुई, दीन को वो वक्त नहीं देते कि मोटे ना हो जाए। ऐसे लोग जब सारा दिन लगा के शाम को पार्टी में आए ना, आप एक जुमला ना बोले उनकी तारीफ़ का, आप उसका एक खामोश इलाज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उसकी तारीफ़ कर दी तो गोया कि आपने उसकी शुगर लेवल को और बढ़ा दिया। उसको नहीं पता, क्योंकि बतर इंसान को मारता है। इसी से ये रेट रेस लगी हुई है सोसाइटी में, लोग फिर बैठ के डिस्कस करते हैं, जिक्र ही ना करें, घर में भी आके ना करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम तनकीद के नाम पे करते हैं, लेकिन हो वो भी गिबता ही रही होती हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि ऐसे लोगों के बारे में अगर आपको मौका मिले, अगर आपकी बहुत बेतकल्फ़ी है ना, तो फिर अकेले में बताएं कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये तो स्टाइल अच्छा नहीं है, इससे क्या मिलता है। तो यही पैगाम दिया गया कि वबतगी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अपने इन पैसों को लगा के आखिरत की बस पे बैठो। अपने इस माल, अपनी इन स्किल्स, इन चीज़ों को लेकर तुम अल्लाह ताला के रास्ते में चलो। और वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, रास्ते में दुनिया आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया हकीर होकर ऐसे शख्स के पीछे में आती है, जलील होकर उसके कदमों में गिरती है जो अल्लाह की तरफ भागता है, और वो अल्लाह ही ये सच है। आप जितनी चीज़ें अपनी से दूर करेंगे ना, उतनी आपके पास और आ जाएंगी। जिन चीज़ों की आपके दिल में कोई कदर नहीं होती, वो चीज़ें आपके लिए यूं बन जाएंगी जैसे लोग उन चीज़ों की हसरतों में जीते हैं। क्यों? कि अल्लाह ताला की बातें सच्ची हैं। और जो दुनिया के पीछे जाता है, फरमाया हाँपता रहता है, हाँपता रहता है। जो जितना दुनिया के करीब जाता है, दुनिया उससे उतनी आगे। बात सबको समझ आती है, लेकिन अमली तौर पे मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा लोगों को वो आखिरत दिखाएं, वो खूबसूरत ज़िंदगी दिखाएं। हम अपने अंदर से कैसे ये चीज़ें निकालें, निकालना चाहते हैं? मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेनियाज हो जाऊं कि मैंने क्या पहना हुआ है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं। अगर मैंने पहनना है तो अपने लिए पहनना है, मैंने अगर ओढ़ना है तो अपने लिए ओढ़ना है। ये कैफियत कब आए? नंबर एक, पहली बात यह है कि कभी भी किसी से अपनी तारीफ ना सुने। जिस तरह दूसरे की तारीफ़ करना नुकसान देता है ना, इस तरह अपनी तारीफ सुनना बहुत नुकसान देता है। अगर कभी कोई ज़रा आपकी तारीफ करने लग जाए ना, फ़ौरन मौजू बदल दें। बल्कि अल्लाह के नबी की वो सिखाई हुई दुआ पढ़ लिया करें, क्योंकि इंसान को बहुत अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। लोग अपनी तारीफ सुनने के लिए अपनी कितनी कीमती चीज़ें ज़ाया कर देते हैं कि हमारी तारीफें करें, कभी ना कहें। देखिए, जब इस्लाम फैलेगा तो ये महफिलों में बैठ के पूरी कपड़ों पे बातें, जिस्म पे बातें, क्या लगाती हैं, क्या पहनती हैं, कहाँ जाती हैं, किस बुटीक है, ये सारी टॉक्स ख़त्म होगी। इसके बावजूद लोग पहने उड़ेंगे क्यों? अपने लिए पहनेंगे, अल्लाह की नेमत के इजहार के लिए पहनेंगे, अपने आप को दूसरों की नज़रों में दुखी ना दिखाने के लिए पहनेंगे, लेकिन दिखावे के लिए नहीं करेंगे ये चीज़ें। और फिर तारीफ़ों से बिल्कुल बेनियाज होकर लोग जब जियेंगे, अल्लाह ताला हकीकी तारीफ़ें उनको देगा। हमारे यहाँ होता क्या कि जब कोई तारीफ़ करे ना तो अक्सर कहते नहीं 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 ऐसे नहीं को, तो अक्सर अमूमन तारीफ़ सुन के लोग क्या करते हैं, नहीं 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 झूठ नहीं बोलो। अगर मुझे कोई कहे, मैं कहूँ तुमने मुझे झूठा समझा, जब मैं नहीं तुम्हारी तारीफ़ करती। बाज़ लोग शर्माने लगते हैं, हैरत का इजहार करते हैं। इन सारी चीज़ों से बेहतर क्या है कि इंसान अपनी तारीफ़ सुने और उसके बाद फिर वो अल्लाह के नबी की सिखाई हुई वो दुआ मांगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि जब मुसलमान अपनी तारीफ़ सुने तो क्या कहे, चलिए मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा
ला तुआखिज़नी
ला तुआखिज़नी
बिमा यकूलूना
बिमा यकूलूना
वग़्फ़िरली
वग़्फ़िरली
मा ला यालमूना
मा ला यालमूना
वजअलनी
वजअलनी
खैरम
खैरम
मिम्मा यज़ुन्नूना।
मिम्मा यज़ुन्नूना,
ए अल्लाह, ये लोग जो कह रहे हैं इसकी वजह से मेरी गिरफ्त ना फरमाना। देखिए कितनी आजजी है कि अल्लाह ये जो बातें कह रहे हैं मुझे ना पकड़ना, मैंने नहीं था इनको कहा कि मेरी तारीफ़ करें, ना मैंने इसलिए पहना उड़ा था कि ये मेरी तारीफ़ें करें, और करनी भी नहीं चाहिए। वक्त फिर ली और मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो ये लोग नहीं जानते, और मुझको उससे बेहतर बना दे जो ये मेरे बारे में गुमान रखते हैं। बस आप देखिए कि आप किसी को देखते हैं कि नया कपड़ा पहन के आपके सामने आया, अब क्या करें, चुप कर जाए, डल फेस, वो सोचेगा जल गया, दुखी हो गए। इस पे भी अल्लाह के नबी ने दुआ सिखा दी कि किसी को नया कपड़ा पहना हुआ देखो तो दुआ दो, इल्बिस जदीदन इश हमीदन मुत शहीदन। तुम नए कपड़े पहनते रहो, इश हमीदन तारीफ वाली जिंदगी बसर करो, और मुत शहीदन तुम्हें शहादत की मौत आए। ये है वो दुआ जो किसी को नया कपड़ा पहना देख कर पढ़े। बस इतना ही काफ़ी होता है, हल्का सा स्माइल दे दें, उसको पता लगे मैं अच्छा लग रहा हूँ। मत किसी की तारीफ़ों के पुल बंद, मुझे कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, अच्छा फिर और भी था और रंग थे इसमें, ये है बतर, ये इश्तहा है, ये ना करें। नज़रों को पहचाने, किसी की नज़र बहुत अच्छे लगे, कोई अपना पहन के सामने के माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इल्बिस जदीदन इश हमीदन मुत शहीदन, आप देखें इतनी मोहब्बत बढ़ेगी दिल में, दो के दिल में वो कहेगा अच्छा इसने पसंद किया मेरी चीज़ को, मुझे दुआ दी, और ये दुआ का जिसको मैंने तर्जुमा बताया यकीन करे वो कहते हैं अल्लाह इतनी प्यारी दुआ, कि आपको ये कहा गया कि आप जिंदा भी रहें, तारीफ़ें भी हों, और आप शहादत की मौत लें। एक और छोटी सी दुआ है, तुबली व युखलिफुल्लाहु तआला, तुम इसे पुराना करो, यानी तुम्हें इतनी लंबी उम्र मिले कि जो आज नया कपड़ा पहन के मेरे सामने आए हो इसको हंडाओ, हमारी जुबान में कहते हैं ना, ये तुम पहन ओढ़ के जाओ, ये ना हो कि तुम्हारे कपड़े देख के तुम्हारी माँ रोती रहे, क्या है मेरी बच्ची तो ये कपड़े पहन के नहीं मरी, इसलिए जो रखे मैं इनको पहन ले जल्दी से, ताकि बाद वालों को अफसोस ना उसके ऊपर, और उतने बनाया करें जो पहन लें। खुद भी हसरत से देखते होंगे, हाय ये कपड़ा तो 6 महीने से नहीं पहना है, किसी के पास अब ऐसा कोई जोड़ा, मौसम के कपड़ों की बात अलग है, लेकिन क्या आप 20 पारे पढ़ने के बाद ऐसे कपड़े हैं कि जिसको आपने इस मौसम में कह लें कि 1 महीने से नहीं पहना, समझे वो आपके नहीं है। फिर आप कहते हैं वो शादियों वाले घर में पहने, दिखाए मियाँ को पहन के, खुश होगा गरीब, जो पैसे लगाता है वो सबसे कम देखता है। तुबली व युखलिफुल्लाहु तआला, तुम इसे बसीदा करो और अल्लाह तुम्हें इसके एवज़ और भी अता करे, यानी ये कोई तुम्हारा आखिरी नया जोड़ा ना हो, इसको पहनो इस्तेमाल करो, और इसके बाद तुम्हें अल्लाह ताला इससे ज़्यादा खूबसूरत जोड़ा अता करे। ये अबू दाऊद की रिवायत है, और जो इल्बिस जदीदन व इश हमीदन व मुत शहीदन है, ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 3585 है, आप बुक से देख के ख़ुद भी लिख सकते हैं। तो इस्लाम क्या चाहता है कि खुश हो, लेकिन लोगों को बहुत तारीफ़ें ना करवाएं, तो आप अपनी तारीफ़ें ना कराएं, कोई करने लगे ना तो बात पलट दें, कहना दुआ दो, फिर आप खुद ही उसको दुआ सिखा दें, क्योंकि अमूमन जब आपने नए कपड़े पहने होंगे तो दूसरों ने भी नए ही पहने होते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ जिससे अपने अंदर से बदर का मर्ज कम किया जा सकता है, वो कह के कम खाइए। कम खाना जो होता है ना, इंसान को अपने नफ्स के ऊपर काबू पाने में बहुत मदद देता है। फिर इसी तरह आखरत को कसरत से याद करें, फिर इसी तरह जन्नत के जोड़ों को, जन्नत के खूबसूरत चीज़ों को नज़रों में रखिए। आपको कोई दुनिया की चीज़ मायल ही नहीं करेगी। फिर बहुत हंसना, खेलना, ठट्ठे, मजाक, महफिलें, इससे अवॉइड करें। हम जितना पार्टीज में जाते हैं उतना हम बतर का शिकार होते हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़ क्या है कि नेमत की जिम्मेदारी को महसूस करें। क्यों मिला ये जोड़ा? मैंने इसमें कोई नेकी की? क्या ये जोड़ा पहन के अल्लाह को नाराज़ कर रही हूँ? क्या ये जेवर, जूता, कपड़ा पहन के मैं लोगों के दिल जला रही हूँ? खुद सोचें कि ये नेमत क्यों मिली, ये जिम्मेदारी क्या है। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो बहुत ही आपको फ़ायदा देगी, अपने ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि अब आपका बचपन तो गुजर ही चुका है ना, बचपन से ही ब्रांड नेम्स का कॉन्शियस ना करें। बस छोटे छोटे बच्चों के मुंह से जब मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुनते देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है। मैं कहती हूँ कि ये बच्चे को किसने बताया कि ये चीज़ महंगी होती है, ये सस्ती होती है, ये उस ब्रांड की है, ये उस ब्रांड की है? ये एडवर्टाइज ने बताया ना, इश्तहारात ने बताया ना, बच्चे इधर उधर से सुन सुना के आ जाते हैं, फिर देखते हैं। सस्ते से सस्ती चीज़, सस्ते से मतलब मैं घटिया या ख़राब नहीं कह रही, बच्चों को तो ख़ास तौर पे जब आप चीज़ दे ना तो एक लेवल कम पे दें जिस पे आप अपनी लेती हैं, वरना शुरू से आप उनको इतना करते हैं। बाज़ दफ़ा देखे, बाज़ मैं अपने पहनने उड़ने की फ़िक्र नहीं करती, बच्चों की करती हैं, अपने खाने पीने की नहीं करती, बच्चों की करती। आप बच्चे को तो समझें ही ज़रा एक दर्जा नीचे। मैं ये नहीं कह रही कि उनको लट डाउन करें, लेकिन उनकी तरबियत का हिस्सा, उनको पता हो कि ये मम्मी की चीज़ है, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ये मम्मी को मिलेगी, ये अम्मी की, और मम्मी को अम्मी कर दें। अब थोड़ा सा अपनी इज्जत करवाएं, आप देखेंगे कि माँ शुरू से अगर इस तरह की कर देगी ना, फिर इसी तरह आप अपने बच्चों को भी इसी तरह सिखाएं। जब आपका बच्चा अच्छे कपड़े पहने तो उसको ये ना कहें बहुत अच्छा लग रहा है, तारीफें करनी छोड़ दें, कितना प्यारा ये, बल्कि उसको भी यही सिखाएं। जिस तरह अभी हमने बात की है कि अच्छे कपड़े पहने, अब छोटा बच्चा नया कपड़ा पहने, आप खुद ही उसको देख के वो दुआ पढ़ दें कि आज तो मेरे बच्चे ने नया जोड़ा पहना है, चलो मैं आपको ये दुआ देती हूँ। देखिए अगली दफ़ा वो भी कहेगा अम्मी आप भी बताएं मैं आपको दूँ, और उसको हो सकता है रोज़ देनी पड़े आपको, क्योंकि अब तो हम रोज़ ही नए जोड़े पहनते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि ये जो लफ्ज़ आया है ना, वला तबगिल फसाद फिल अर्दी, फसाद ना ढूंढो, ख्वाहिश ना करो फितने फसाद की ज़मीन में, इस पर भी थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है कि जब सोसाइटीज़ में बतर का मर्ज़ आता है ना तो इतदाल बिगड़ता है, अमीर अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब तर हो जाता है। जिस तरह खून एक जगह जमा होकर गाढ़ा हो जाता है ना तो दिल का मर्ज शुरू होता है, इसी तरह जब दौलत एक जगह जमा होती है ना तो बिगाड़ पैदा होता है, सोशल डिसऑर्डर है। गरीब इतना रो रहा है कि रोटी भी नहीं है और अमीर बाइट लेके फेंक देता है। ऐसी सोसाइटीज़ में चोरियाँ होती हैं, ऐसी सोसाइटीज़ में ही पर्स छीनते हैं, इसी सोसाइटीज़ में ही लोग जेबें काटते हैं कि ये देखो अच्छे ने बर्गर खाया और चखा और छोड़ दिया, ये नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, और वो उनको नया लाने को तैयार है, और घर में मेरे बच्चे रो रहे हैं कि जिनके पास रोटी भी नहीं है, और वो उन्हीं के टुकड़े जमा करके ले जाते हैं। इस्लाम ऐसे डिसऑर्डर को पसंद नहीं करता। इतदाल का बिगड़ना, वसाइल को ज़ाया करना भी बिगाड़ है, दूसरों के हक तलफी भी बिगाड़ है। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ आप ज़ाया करें तो कितनी ज़ाया होती है। एक किसी का छोटा सा एक्सपीरियंस था कि टूटी के अंदर से एक एक कतरा पानी का गिरता था। कभी आपकी भी कोई टूटी लीक करती हो तो आप भी ये समझ सकते हैं, बस आप उसके नीचे बाल्टी रख दें, आपको पता है कि सुबह तक कितना पानी, एक कतरा पूरी रात अगर चलता जाए तो सुबह तक 10 लीटर पानी ज़ाया हो चुका होता है, 10 लीटर। और एक लीटर कितना है, और दनान की ज़मीन को जाके देखें कि वहाँ शायद एक एक घूंड को लोग तरसते होंगे। जब कुछ लोग माल ज़ाया करते हैं ना तो फिर दूसरी तरफ ज़रूर गुर्बत होती है, उन्हीं का हक उस तरफ जा रहा होता है, और ज़्यादा फसाद होता ही माल के साथ है। फिर ये देखिए कि इसमें जो बात आती है एक और, काल इन्नमा ऊती तो अला इल्मिन इंदी, ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे जुमला इसका, कहने लगा कि मैं तो अपने इल्म की वजह से दिया गया हूँ, ये दौलत और सरवत मुझे उस इल्म से मिली है जो मेरे पास है। इस जुमले के दो मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं कि उसने ये जुमला क्यों कहा कि जो मुझे मिला है वो तो मेरे इल्म पर मिला है। एक तो इसका मफहूम सीधा सा है कि मैंने जो कुछ पाया अपनी काबिलियत से पाया, ये कोई फजल नहीं है, पीछे करो अल्लाह को, कोई अल्लाह का फजल नहीं होता। जो हक के बजाय एहसान के तौर पर किसी ने मुझको दिया हो, अब मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी बात है, क्योंकि नाअहल लोगों को कुछ नहीं दिया गया और मुझे मिला ये सब कुछ, यानी एक मफहूम ये बना। दूसरा मफहूम क्या है کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت مجھے دی ہے نا، یہ میرے اوصاف کو جانتے ہوئے تو دی ہیں. انگلش میں ایک جملے میں لکھ لیں کہ آئی ڈیزرو اٹ. اللہ نے دی ہے، اللہ کو پتہ ہے آئی ڈیزرو اٹ. اگر میں اس کی نظروں میں پسندیدہ نہ ہوتا، میں ڈیزرو نہ کرتا، تو آخر وہ مجھے کیوں دیتا؟ یہ جو مجھ پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اللہ نے مجھے دی ہے. اور اللہ نے دی سے مراد یہ کہ آئی ڈیزرو اٹ. اللہ دینے والے کو تو بیچ میں نکال دیں. یہاں آپ دیکھیے کہ لفظ اوتی توہو علی علم، اس کی روشنی میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب کوئی علمی کامیابی حاصل کرے تو کیا اس کو بھی سراہنا چاہیے کہ نہیں؟ اعزازات، مثلاً فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اتنے نمبر، اتنے بڑے ہوئے، دس اینڈ دیٹ. میں اس کو عملی طور پہ بات کرتی ہوں. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، سب کلاس میں ٹیسٹ بھی دیتے ہیں. آپ سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر ہاف پارے میں نمبرز بھی آتے ہیں، کسی کے پورے آتے ہیں، کسی کے آدھے آتے ہیں. کیا کبھی آپ نے آج تک یہ دیکھا کہ یہاں ڈسپلے پہ کر کے دکھائے گئے ہوں کہ آپ میں سے اس کو فرسٹ آیا، اس کو سیکنڈ، اس کو تھرڈ؟ ایون آپ کا جب شروع میں 10 پاروں کا غالباً جو اس سے پچھلا رزلٹ بھی ہوا تھا، تو اس میں راؤنڈ فگر بات کی گئی تھی. کیوں؟ کہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کامیابی کو مزید نمایاں کرنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو ایک تو کامیاب ہو رہا ہے، دوسروں کو ناکامی کا احساس ہوگا. دوسری بات ہے کہ جن کا نام لے کے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اندر تکبر آ جائے گا، خود پسندی آ جائے گی، فرحین بننے کا اندیشہ ہوگا. ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ پھر جن کی کامیابی کو دنیا میں بہت سراہ دیا جاتا ہے نا، تو وہ آخرت پر نظر نہیں رکھتے. وہ ساری کوششیں کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کچھ لینے کے لیے وہ تقویٰ نہیں دل میں پیدا ہوتا. پھر ایک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی صلاحیت فرق ہوتی ہے. کچھ کو گاڈ گفٹڈلی بہت زیادہ ذہانت ملی ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ ترجمہ یاد کرتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے، کچھ کئی دفعہ پڑھتے ہیں پھر یاد ہوتا ہے. تو اب کیا آپ نے انعام دے کر انصاف کیا؟ نہیں کیا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ حالات فرق ہوتے ہیں. کچھ کا پورا گھر کا ماحول ان کا ساتھ دے رہا ہے، بعض کے تو شوہر ترجمہ بھی یاد کراتے ہیں، میں نے سنا ہے، مدد بھی کرتے ہیں، لکھ کے بھی دیتے ہیں. اور بعض بیچاری مردوں کے سونے کا انتظار کرتی ہیں، وہ سوئیں تو ہم پارا کھولیں تاکہ یاد کر لیں سبق. تو ظلم ہوگا نا اگر آپ نے ایک کا ساتھ دیا. جیسے بعض بچوں کے ساتھ مائیں لگی ہوتی ہیں، سبق یاد کرا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، ان کو ناشتے بنا کے دے رہی ہیں، بعض بچے خود ہی کرتے ہیں. تو فرق ہے نا، ہم انصاف کر ہی نہیں سکتے. اسلام کیا کہتا ہے کہ کامیابی تو خود ہی ایک اچیومنٹ ہے، اس سے تو خود ہی ایک انرجی ملتی ہے، تو خود ہی ایک انعام ہے. دنیا میں کامیابیاں انسان کو خوشی دیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رزلٹ کے اوپر کبھی سٹارز مل جائیں گے، کبھی آپ کو گوٹ لکھ دیا، کبھی 12 قلعہ، کبھی ماشاء اللہ. دیٹس اٹ، اتنا ہی کافی ہے. نہ اپنے نمبرز دوسروں کو دکھایا کریں، نہ پوچھا کریں، کبھی نہ پوچھیں کسی سے. کوئی خود خوشی سے بتاتا ہے تو بتا دے. ہاں، اس دن کا انتظار کریں کہ جس دن جن کو نام مال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی خوشی جا کے کہیں گے ہاؤ مکرو کتابیا، لوگوں دیکھو میرا حساب کتاب. انی زنن تو انی ملاق ان حسابیا، میرا یہ گمان تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. تو بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہلکی پھلکی بات کبھی کوئی اشارتاً کسی کو کرنے کو کہا جائے، ٹھیک ہے. آج کے دور کا کہتے نہیں، اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے. انکریجمنٹ ملنا اور کانفیڈنٹ ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. آج بہت سارے بچے صرف اس لیے بولڈ بن جاتے ہیں، بہت انکریجڈ سے زیادہ وہ سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تعریفیں ان کی جاتی ہیں. نفع تلا رکھیے. اسی طرح کام کرنے والوں میں، کوئی کام اچھا کر کے آتا ہے، بہت اچھا کہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. کیا یہ جملہ تھوڑا، کوئی کہ ہماری تعریف ہی نہیں ہوتی، ہم کام کرتے ہیں ہمیں کوئی سراہتا ہی نہیں، تو اس کا تو آپ نے ہمارے لیے کیا. آپ میرے لیے کر رہے ہیں یا میں آپ کے لیے کر رہی ہوں؟ بس آپ، میں اپنے اوپر بات لیتی ہوں کہ میں نے آپ کو پڑھایا، میں کیوں پڑھاؤں؟ کہ جو ہی میں یہاں سے اٹھوں تو آپ کے ماشاءاللہ، آپ نے تو بڑا ہی اچھا پڑھایا، آپ تو بہت اچھا پڑھاتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے تو آپ کی تعریف ہونی چاہیے، میں تو اگلے دن فکر کروں. آج کے دور میں یہ جملہ جو ہے نا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ بھی بولتے ہیں. آخر جی، ہم نے ہارورڈ میں پڑھا، ہم کنیٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، ڈگری کے. بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا، اپنی گاڑی کے پیچھے اپنے معروف اسکول یا یونیورسٹی کا اسٹیکر لگا لیتے ہیں. یہ بڑے بتر کے مرض ہیں آج کل، یہ لڑکے لڑکیوں کے مرض ہیں، اور ان کے بنے ہوئے بھی ہیں، آپ کو اشتہار دکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں، کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کس اسکول کا پڑھا ہے. बच्चों की अपनी तारीफें करते रहना, मेरे बच्चों के इतने नंबर आते हैं, मत करें। आप अपने बच्चे की तारीफ कर ही हो सकते हैं, जिसका सुन रहे हैं उसका बच्चा बेचारा फेल हुआ हो। आप फर्स्ट ग्रेड आया, आपका बच्चा ले आया, उसने दूसरे को, हो सकता है उससे दो चार नंबर कम हो, क्या खुशी होगी? आप गौर करेंगे ना तो इस्लाम का मिजाज क्या है, कम बोलो न जा मन समझ। और कम बोलने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नुस्खा है, अपने आप को मसरूफ कर लो, बिजी कर लो, कि इतना अल्लाह के रास्ते में आप बोलने लग जाएं कि आप फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बोलें तो लफ्ज़ तोलें, गिन के बोलें, सोच के बोलें। यकीन करें, पढ़ाने के बाद जब मैंने कोई अपना फ़ोन करना हो, कोई ज़ाती बात करनी हो, मेरा दिल ही नहीं करता बोलने को। कई दफ़ा फ़ोन सिर्फ इसलिए नहीं करती कि हिम्मत नहीं है, या हिम्मत बचानी है इसलिए कि अभी अगली किसी क्लास में बोलना है। और अगर हर वक्त हम अपने ही कसीदे गुनगाते रहे ना, अक्सर आप देखिए घरों में माहौल क्या होता है, मजहूल माहौल होता है, सारे ही शोर कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे बंदे को नहीं पता कि अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलक मिन कब्लिही, कि क्या उसको नहीं पता कि अल्लाह ने हलाक कर दिया उन लोगों को जो इससे पहले थे, कई बस्तियाँ, मिनल कुरून, बस्तियों की बस्तियाँ गुजर गईं, मन हुआ शद्द मिनहु कुव्वा, वो उनसे ज़्यादा कुव्वत में थी, शिद्दत में थी, व अक्सर जमा, बहुत बड़ी जमात थी उनकी, बहुत बड़े गिरोह थे उनके, वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और नहीं दरियाफ्त किए जाएंगे मुजरिमों से इनके गुनाह। यानी क्यामत के दिन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अल्लाह को सब कुछ पहले पता था। ये नहीं मतलब कि उनसे पूछ गिछ नहीं होगी, यानी मुजरम तो ये वहां कह रहे होंगे हम बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन असल उनकी हकीकत क्या थी ये अल्लाह बताएंगे।